اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ہم ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے، نیوز ون سے، آپ کے لیے لائیو حاضر ہیں۔ سامعین، صبح ہم نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، مختلف ممالک سے ہوں گے، اسکینڈینیویا سے ہوں گے۔ چند لمحے پہلے پی ٹی آئی کے میاں اختر ایاز صاحب کی آپ بات سن رہے تھے، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں۔ لیاقت بدر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے، ان سے بھی آج بات ہوگی۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ اوسلو کی فضاؤں سے ایک ایسے نوجوان، ایسے پی ٹی آئی کے، ایسے ہمارے کونسلر، سٹی کونسلر ہیں۔ میں ان سے آج بہت ساری ان سے باتیں کرنی ہیں۔ آفٹی ریکارڈ جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو مجھے وہ بہت اچھے لگے، بہت زیادہ ان کے ساتھ پاس نالج ہے اپنی کمیونٹی کا، اور اپنے جو ہے وہ کمیونز کے الیکشن کے حوالے سے سٹی کونسلر ہیں وہ، اور بھی حوالوں سے وہ بہت اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ان سے ہم بات کریں، انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کریں، اور اپنے سامعین کو اور سب سیاستدانوں کو انفارمیشن دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ پتہ چلے اور ہمارے سامعین کو بھی کچھ پتہ چلے۔ ناصر گوندل صاحب، ہم آپ کو کوپن ہیگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ جی، میں آپ کا شکر ہوں کہ آپ نے آن لائن مجھے لیا اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔
ناصر گوندل صاحب، آپ جانتے ہیں، آپ جو ہے وہ سیاست یہاں کی کرتے ہیں، ناروے کی سیاست زیادہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستانی ہیں، اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تفصیلی تعارف ہمارے سامعین کے ساتھ کریں۔
تفصیلی تعارف یہ ہے کہ 95 میں ناروے آیا تھا، اور پاکستان میں نے 5 سال پاکستان ٹیلی ویژن میں سرو کیا ہے، اور خواہش یہ تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں سرو کرتے ہوئے میں وہاں جو پولیٹیکل کوریج ہے اسے انجام دوں، اور اسی سینس میں پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کے لیے کرنٹ افیئر کا پروڈیوسر بننا مقصود تھا، اور اس کے لیے پھر مجھے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کی خواہش پیدا ہوئی کہ کرنٹ افیئر کا پروڈیوسر جو بننا ہے تو پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا جائے۔ میں نے ماسٹر وہاں کیا پاکستان میں، اور جو ہی کرنٹ افیئر کے پروڈیوسر کی کاوش شروع ہوئی تو ناروے آنے کا پروگرام بن گیا، اور ناروے آنے کے بعد مختلف قسم کے کام کاج کیے۔ سب سے میرا پہلا گول تو یہ تھا کہ میں یہاں آ کر زبان سیکھوں، تاکہ سوسائٹی میں، اگر کسی بھی سوسائٹی میں اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، تو وہاں کی لوکل لینگویج سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ سیکھنے کے بعد میں نے نارویجن امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال ایز ایگزیکٹو آفیسر سرو کیا، اور ابھی میں نے اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل کیا ہے، کیونکہ نارویجن امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمارے بہت سارے جو دوست خواتین و حضرات وہ بڑے معصوم ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ان کے جو کیسز ہیں وہ انہیں نیگیٹو مل جاتا ہے۔ تو پھر میں نے نارویجن امیگریشن میں چھوڑ کر میں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ میں لوگوں کو انٹرٹین کر سکوں، ان کو گائیڈ کر سکوں کہ جب آپ امیگریشن میں کوئی کیس سبمٹ کرتے ہیں تو کون کون سی چیزیں جو ہیں انہیں آپ ضرور دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد ان کو فلفل کرنے کے بعد اپلائی کیجیے۔ تو یہاں میں نے ایک نارویجن جو کمپنی ایک بنائی جس کا مقصد لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ اس کا نام ہے ہیلپ امیگریشن ایڈوائزر اینڈ ری لوکیشن سروسز۔ ہم لوگوں کو اسسٹنس اور جو ایڈوائس فری آف کاسٹ کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی اس میں پیسوں کا لین دین نہیں ہے۔ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے کمیونٹی میں، ویلفیئر کی سینس میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور ویسے دوسری طرف میں ناروے کے ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سینئر ایگزیکٹو آفیسر کی پوزیشن پہ کام بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ پارٹ ٹائم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا میرا جو گول ہے وہ اپنے لوگوں کو، اپنی جو مینورٹیز ہیں ان کے لیے نارویجن سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایسی وہ تمام کاوشیں کرنا ہے جن سے وہ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اسی سینس میں میں نے ناروے کی ایک پارٹی ہے، سوشلسٹ لیفٹ پارٹی، ایس وے ہم اسے کہتے ہیں، وہ جوائن کی، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ پارٹی ہے جو مینارٹیز کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتی ہے، اور ہمیشہ جو इक्वल राइट्स को जो डिवाइड एंड रूल के मुताबिक चलती है, उसमें मैं पिछले 12 साल से सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की तरफ से जो इलेक्टेड जो काउंसलर हूँ, और यहाँ की जो द्रमन सिटी की जो अकाउंटेबिलिटी कमेटी है उसमें मैं बैठता हूँ, और मकसद यही है कि अपने लोगों को सर्व किया जाए, और ऐसे तमाम महाज, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स जहाँ हम लेजिस्लेशन होती है, जहाँ हमारे ओवरसीज से मुतल्लिक बातें की जाती हैं या उनके लिए लेजिस्लेशन की जाती है, वहाँ बैठ कर हम अपना इनपुट दे सकें, ताकि उन्हें जो स्टेट है उन्हें पता हो कि जो मिनॉरिटीज हैं उनके कौन कौन से मसाइल हैं, और वो कहाँ कहाँ जो है उनको जो असिस्टेंस की जरूरत है, या उनको उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मजहबी तौर पर भी हमारे जो अकायद हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, वो जो अगली जनरेशन है, वो अपनी मजहबी अकायद के मुताबिक आजाद जिंदगी गुजार सके। उसके लिए ज़रा ये हम मिनोरिटी की सिचुएशन में हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम हमेशा काविश करते रहते हैं कि किस तरह हमारे बच्चे जो है वो जिन तकलीफों और मसाइल से हम दो चार हुए हैं वो ना हो। तो उसके लिए हमेशा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसे तमाम जो मसाइल हैं उनको कम्युनिटी में रहते हुए इकट्ठे मिल बैठकर इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ काम करें। तो उसके लिए माशाल्लाह हमारी इधर मेरे शहर के अंदर हमने अपनी लोगों की, अपने दोस्तों की एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है, जिसमें 600 मेंबर्स हैं। हमने अभी 22 मिलियन की मस्जिद बनाई है, जिसमें हम अपने बच्चों के लिए स्कूलिंग का भी काम करते हैं, अपने बच्चों को उर्दू सिखाने का भी काम करते हैं, लोकल कम्युनिटी के साथ जो ब्रिज बिल्डिंग का भी काम करते हैं, लोकल जो गैर मुस्लिम्स हैं, जो नॉर्वेजियंस हैं, उनको डायलॉग के लिए इनवाइट करते हैं, उनके साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप किया हुआ है, ताकि हमारे जो 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 कम्युनिटीज के दरमियान जो फासले हैं उनको दूर किया जा सके, और उसमें हम किसी हद तक कामयाब भी हैं, लेकिन हमें अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया
गुदल साहब, आपने बड़ा अच्छा किया कि अपने बारे में सब कुछ बताया। माशाल्लाह आपने वो जिसे टेनिश में कहते हैं बड़ी अफाएंगे, आपके पास बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं। तो मैं सिटी काउंसिल की बात करूंगा, तो इस वक्त हमारे पाकिस्तानी निसाद या गैर मुल्की कितने सिटी काउंसलर्स हैं और पार्लियामेंट के मेंबर हैं?
जी अभी दो जो हैं वो पार्लियामेंट, तीन पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं जो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में बैठते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ इलेक्शन हुए हैं पार्लियामेंट के, जिसमें लेबर पार्टी की जो सेकंड हेड है नॉर्वे में, हादिया ताजिक साहिबा, वो मिनिस्टर भी हैं अभी, सिटिंग मिनिस्टर है। और उसमें दूसरी जो वेंस्टे एक पार्टी है लेफ्ट विंग में, आबिद राजा साहब, वो पार्लियामेंट में है, और एक कपूर साहब है पाकिस्तानी नजाद गुजरात डिस्ट्रिक्ट से, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर है। और 10 के करीब हम काउंसलर्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में। तो एक खासा अच्छा अच्छी पार्टिसिपेशन है हमारी सोसाइटी की। जहरा ये एक ब्यूटीफुल ब्रेन जो है जी हमारे यहाँ, हमारे जो बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और सोसाइटी में वो अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मिनोरिटीज को डिफेंड नहीं करते हैं, वो पूरी नॉर्वेजियन कम्युनिटी की तरफ से तमाम वो जो मसाइल हैं सोसाइटी में उनको हल करने के लिए अपना पूरा पूरा किरदार अदा करते हैं। तो हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे बच्चे नॉर्वेजियन माशरे में हर महाज पर और हर जगह पे, आप डॉक्टर्स ले लीजिए, आप IT इंजीनियरिंग, और नॉर्वे में जो टैक्सी ब्रांच है, रेस्टोरेंट ब्रांच है नॉर्वे में, बसेज हो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, उसमें बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हमारे जो बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं वो अब एडजस्ट हैं और अपना किरदार बड़े बेहतर अंदाज में, और जो एडमायर करती है सोसाइटी भी और नॉर्वेजियन हुकूमत भी इस बात से पूरी तरह अवेयर है कि जो मिनोरिटीज हमारे मुल्क में आई थी उन्होंने कितनी जल्दी हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेट भी किया है और हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उसका हिस्सा भी है। तो ये बड़ी खुशाइंदा बात है कि हम पूरी तरह अवेयर भी हैं और अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। جی شکریہ
گورنر صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ سب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، جس طرح میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اور آپ سٹی کاؤنسلر ہیں، آپ اپنے طرز پر کام کر رہے ہیں، وہ اپنے طرز پہ کام کر رہے ہیں، تو جو ہمارے لوکل سوسائٹیز ہیں ان کا کیا رول ہے؟
لوکل سوسائٹی میں مراد ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا
اوورسیز
جو
پاکستانی ہیں، میں جس طرح پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، مناج القرآن ہے، یا اور کوئی مذہبی جو، ان کا رول کیا ہے؟
ایسا ان کا نارویجن سوسائٹی میں تو کوئی رول نہیں ہے اس میں، تو یہ درست بات ہے، لیکن تمام جتنے بھی یہ جو آپ نے پارٹیز بتائی ہیں یہ براہ راست پاکستان کے ساتھ انٹر لنک ہیں، اور وہ اس سینس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان میں جیسے مناج القرآن ہے تو وہ یہاں سے فنڈ ریزنگ کر کے پاکستان میں غربا اور یتما کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور اپنا ایک انہوں نے سٹرکچر بنایا ہوا ہے، لیکن آج سچ جو مسلم لیگ یا کاف لیگ یا پیپلز پارٹی کے جو، وہ یہاں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپیریٹیولی دوسروں کے وہ زیادہ یہاں ایکٹیو بھی ہے، اور کمیونٹی کے کچھ معاملوں میں اپنا کردار بھی ادا کرتی ہے، اس میں کوئی کسی بھی جگہ بھی جیسے شوکت خانم ہے، وہ انہوں نے بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا، لیکن خیر اس میں دوسرے جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کا بھی ایک اچھا کردار ہے، انہوں نے اپنے ایک انڈیویجل ایفرٹس کی ہیں، لیکن ایز سچ جو نارویجن سوسائٹی میں رہتے ہوئے ناروے کی جو کمیونٹی یا پرابلمز ہیں ان میں کسی بھی پارٹی کا کوئی بہت زیادہ بڑا کردار نہیں ہے، لیکن جو جی پلیز
گوندل صاحب، اگر میں بات کروں مذہبی حوالے سے تو میں نے مناج القرآن کا بڑا نام تھا، یہ جو 22 ملین کی جو مسجد بنی ہے، کیا یہ مناج القرآن کی ہے یا کہ لوکل لوگوں کی ہے؟ یہ
یس سر، یہ انفارچونیٹلی میں یہاں ایک تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا ایک بات، وہ یہ ہے کہ یہ مسجد ہم لوکل افراد نے مل کر بنائی ہے، مناج القرآن کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک تھوڑا سا ایک پارٹیسپیشن اس طرح سے ہے کہ کچھ سال پہلے جب ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم مسجد بنا سکیں، ہمارے پاس ریسورس نہیں تھے، تو ہم نے تمام مکتبہ فکر کے جو افراد ہیں سوسائٹی میں ناروے میں، تمام جو مساجد ہیں ان سے رابطہ قائم کیا کہ ہم ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، زیادہ ہمارے ممبرز کی تعداد نہیں ہے، ہم انفارچونیٹلی خود مسجد بنانے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ ہماری مدد کیجئے۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈائیلاگ کیا بہت ساری مساجد کے ساتھ کہ ہمیں آپ ہیلپ آؤٹ کیجئے، لیکن مناج القرآن کے علاوہ کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور انکار کر دیا، مناج القرآن نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو مسجد بنا کر دیں گے، ہم نے بڑے ہمارے لیے تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ مناج القرآن نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم مسجد بنا کر دیں گے، ہم نے مناج القرآن کو جوائن کر لیا، ہم نے اپنی مسجد یا افراد یا اپنی جو کمیونٹی یا جو یونین ہے اس کا نام بھی مناج القرآن رکھ لیا، اور ہم ان میں ضم ہو گئے، لیکن یہ 6-7 سال ہم مناج القرآن کا حصہ رہے، اور ہر بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم انہیں باور کرواتے رہے کہ ہمیں مسجد کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس میں ہماری ہیلپ آؤٹ کیجئے، انڈیویجولی لوگوں نے مناج القرآن کے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا، لیکن ایز سچ جو مناج القرآن نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایز اے انسٹیٹیوشن ایز اے آرگنائزیشن کہ ہم آپ کو مسجد بنا کر دیں گے، تو وہ انہوں نے ٹوٹلی انکار کر دیا۔ میں نے بذات خود طاہر القادری صاحب کے ساتھ جب وہ کینیڈا میں تھے تو ایک ٹیلی فونی کنورسیشن میں ان سے یہ تقاضا کیا کہ حضور والا آپ نے ہم سے مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو اس میں آپ نے ابھی تک ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا، تو وہ انہوں نے وہی دلاسہ دیا جو وہ ہمیں پچھلے 5-6 سال سے دلاسہ سنتے آ رہے تھے کہ بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بن جائے گا، لیکن باضابطہ ہمیں انہوں نے بالکل ہیلپ آؤٹ نہیں کیا۔ تو جب ہم نے اپنا یہ تقاضا زیادہ کیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ نے، ہم نے ایکچولی مسجد 2 فیسز میں بنا رہے تھے، ایک فیس بن چکا تھا جو ہم نے انڈیویجول اپنے خود اپنی جو کلیکشن سے بنایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے مسجد کا حصہ بنا لیا وہ بھی مناج القرآن کے نام کر دیجئے، तो फिर हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं था। हम समझते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है वही मस्जिद की अमलाक को ओन करेगी, वही इसके मालिक हैं। ये नहीं हो सकता कि हम किसी बिरूनी एक ऑर्गेनाइजेशन को के नाम अपनी बिल्डिंग को कर दें, और अगर हमने वहां एक कील भी लगाना है तो हम उसे इजाजत लेकर लगाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेंबर जो जो लोकल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वही मस्जिद को भी, वही मस्जिद के स्ट्रक्चर को भी, वही मस्जिद की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को ओन करेंगे। तो हमने उनकी इस बात को रिफ्यूज कर दिया, और फिर हमने 7 साल के बाद मिनहाजुल कुरान को खैरबाद कर दिया, क्योंकि उनके रवैये में वो लॉयलिटी नजर नहीं आई जिसका उन्होंने हमसे वादा किया था। हमें उन्होंने स्पिनट्स दिए 7 साल के, आज कल परसों हम आपकी मदद करेंगे। एट लास्ट उन्होंने हमें ये कहा कि जो आपने अपना फेस बनाया हुआ है वो भी हमारे नाम कर दीजिए। तो इससे हमने टोटली इनकार किया, और फिर हमने मिनहाजुल कुरान से निकलने का फैसला किया। और ये 600 मेंबर्स हैं जिन्होंने मिनहाजुल कुरान को, मिनहाजुल कुरान से निकलने का फैसला किया। लेकिन बड़ा दुख होता है जब इस पाए के जो जो इस्लामिक लीडरशिप है उसने हमारे 2 लख कर दिया हमें। हम उन्होंने अपने जो बहुत ज्यादा करीबी चाहने वाले थे उन मुरीदैन को लेके एक इसी छोटे शहर में मिनहाजुल कुरान का एक लहदा सेटअप बना के दिया, ताकि ये जो मस्जिद बनाने का जो अमल है ये कर ही ना सके कभी। होना तो ये चाहिए था कि कादरी साहब हमें ये कहते कि बेटे आप अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, आप बाहर निकल जाए, आप अपना मस्जिद खुद बना सकते हैं तो बना लीजिए। लेकिन उन्होंने हमारे दरमियान हमारे ही दोस्तों को 2 लख कर दिया, अलहदा कर दिया। अपने जो मुरीदायन है उनको वो लेके अलहदा चले गए, और हमें अकेला जो है ना जो समुन्द्र के दरमियान में हमें छोड़ के तो वो चले गए। तो ये ऐसा एटीट्यूड किसी किसी आलम दीन का कैसे हो सकता है? वो कैसे ये बात कर सकते हैं कि आप, हम तो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, और ये उनकी मेरे मेरा मैं जाती तौर पर से उनकी एक नेगेटिव एटीट्यूड की तरह देखता हूं कि उन्होंने बजाय हमें दीन के एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के हमें 2 लख भी किया, और इस तरह की वो काविश जो है ना करने का सबब से हमें ज्यादा एनर्जी मिली। हमने और दिन रात मेहनत की, मेरे और मेरे दोस्तों ने, हमने 22 मिलियन फिर इकट्ठा भी किया इसी लोकल कम्युनिटी से। हमने, मैं डेनमार्क में भी आया, वहां से भी मैंने पैसे इकट्ठे किए। हम दोस्तों के साथ, हम बर्गन, स्टावांगर, ट्रोनहाइम, हम मुख्तलिफ जगहों पे बाजाबता गए, और अपनी इस 22 मिलियन की अमाउंट को हमने, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी मस्जिद बन चुकी है। 22 मिलियन जो हमने जमा किया था वो लग चुका है, और हमारे बच्चे दिन रात वो सैटरडे संडे को कुरानिक स्टडी भी करते हैं, बच्चे उर्दू भी सीखते हैं, बच्चे नमाज और दूसरी जो रिलीजियस जो एक्टिविटीज हैं उनको भी परफॉर्म करते हैं, और हम बड़े खुश हैं मिनहाजुल कुरान से बाहर निकलकर। हम बड़े हम समझते हैं कि अगर हम मिनहाजुल कुरान से बाहर ना निकलते तो हम मजीद 10 साल वो इसी लॉलीपॉप और पीनट्स के ऊपर रहते कि हम आपको आज बना के देंगे, कल बना के देंगे। तो ये मेरे नजदीक, मेरी जो सोच है उसमें हमने बहुत अच्छा किया। हम मिनहाजुल कुरान से हम बाहर निकल आए, और इंडिपेंडेंटली हमने मस्जिद भी बना ली, और अपने हमने तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म भी कर।
गोंदल साहब, ये बड़ी शाकेबल न्यूज़ आपने दी है। कादरी साहब का तो बड़ा होल्ड था, और ये सारी जो है ये तो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये तो किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती। ये मिनहाजुल कुरान की ज़ाती प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे।
जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये बिल्कुल मिनहाजुल कुरान की जाती प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, और जिसके लिए हम, हमारे मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी नहीं थे कि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से, अपनी दिन रात की कमाई लगाकर बनाई है, वो जो उन्हें जो है ना जो उसकी जो रजिस्ट्री है वो उन्होंने कहा कि आप हमारे नाम कर दीजिए, देन वी विल हेल्प यू। तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। इसी तरह सर, मैं 2 साल मिनहाजुल कुरान का प्रेसिडेंट रहा हूँ नॉर्वे में, इधर द्रमन सिटी में। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे पास 40,000 करोड़ फितराने की मद में पड़े हुए थे, वो मैंने खासी क्रॉस्पॉन्डिंग की मिनहाजुल कुरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ कि मैं आपको काउंट टू काउंट भिजवाना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने मेरी इस बात को हमेशा रद्द किया। मैं तकरीबन 1 महीना मैं लगा रहा कि मैंने आपको 40,000 करोड़ भिजवाने हैं, मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए पाकिस्तान का, मैं आपको अकाउंट के जरिए पैसे भिजवाऊं। तो मुझे हमेशा उन्होंने इनकार किया कि भी नहीं, आप ओस्लो में हमारे ओस्लो सेंटर को दे दीजिए पैसे, वो हमें भिजवा देंगे फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा मायूस हुआ इनकी इस तरह की काबिलियत से। मेरा जाती नुकते नजर है कि ये अपना सारा जो बिजनेस है हुंडी के जरिए करते रहे हैं, और यही इनकी कोशिश रही है कि पैसे जो उनके पास पाकिस्तान में आए जाए, उनका कोई सर पाँव ना हो, उनकी कोई जो है ना ट्रैकिंग ना हो, उनका कोई पता ही ना हो कि वो कहाँ से आए और कहाँ गए। मैं अभी आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। 40,000 करोड़ मैं पाकिस्तान उनके जो फॉरेन अफेयर के जो डायरेक्टर है उनके साथ मैं क्रॉसपॉन्डिंग करता रहा हूँ, उनके साथ मैंने ई मेलिंग की है, और उन्होंने हमेशा मुझे एक बात कही कि मैं साहबजादा साहब से पूछ कर बताऊंगा। इसका मतलब है कि मिनाजुल कुरान की जो उन्होंने 30-30 साल मिनाजुल कुरान में काम किया है, जो लोगों ने सर्व किया है दीन की खातिर, उनकी वहां कोई हैसियत नहीं है। वो उनके ताहिर अल कादरी साहब के जो दो बेटे हैं, वही हर अमलाक, हर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, हर चीज के होली सेली में मालिक हैं। जबकि कादरी साहब दुनिया में ये मैसेज देते रहे हैं कि मैं मोरूसी सियासत के खिलाफ हूँ, मैं मोरूसियत को पाकिस्तान से खत्म करना चाहता हूँ, जबकि उन्होंने अपने दो बेटों को मिनाजुल कुरान की तमाम जो किंगडम है उसका मालिक बना दिया है। जब से वो स्टडी करके वापस आए हैं, अब वहां कोई भी शख्स जो है वो बबांगे दौलना तो मेरा नहीं ख्याल के बात कर सकता है, क्योंकि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि जो उनके फॉरेन अफेयर के डायरेक्टर हैं उनको मैंने कहा कि मैं पैसे आपको भिजवाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए, और उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात कही कि मैं साहबजादा साहब से पूछ कर बताऊंगा।
मतलब कि आप पैसे दे रहे हैं, आप पैसे ले तो नहीं रहे थे, देने वाले को क्या पूछने की ज़रूरत है?
सर देखिए, ये देखें, यही तो चीज है कि मैं फितराने के पैसे आपको भिजवाना चाहता हूं, बस मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपके अकाउंट टू अकाउंट भिजवाना चाहता हूं,
बहरहाल
क्योंकि हमने ये फैसला किया,
गोंदल साहब, ये बड़ी
क्योंकि हमने
शाकेबल न्यूज़ है। वो तो उनका तो बड़ा असर रसूख है, उनका तो मिनाजुल कुरान का तो तूती बोलता है नार्वे में, उनकी नार्वे की सियासत में जो हमें खबरें मिलती हैं।
नहीं सर, ये ऐसा ऐसी ऐसी बात नहीं है। मिनहाजुल कुरान का अपना एक स्ट्रक्चर है इस नॉर्वे में, और वो बड़ा काम कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। वो उनकी एक एसोसिएशन जो है वो बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड है नॉर्वे में, लेकिन जो जो चीजें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या जो उनकी कोताहियां हैं, उसको मैं बबांगे दोहल आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम तो बड़े इनोसेंट लोग हैं, हम तो सिर्फ दीन को सीखना चाहते हैं, हम तो दीन की प्रैक्टिस जो है ना नॉर्वे में मिनोरिटीज की पोजीशन में रहकर करना चाहते हैं। जरा हमें तो चाहिए कि कोई ऐसा आलम दीन हमारा हाथ पकड़ ले जो हमारी इन इस काविश को जो है ना वो पाया तकमील तक पहुंचा दे। और हमने मिनाजुल कुरान के साथ ये एडवेंचर किया, 5-6-7 7 साल हम रहे, हम उससे बाहर निकले। बाहर क्यों निकले वो मैंने आपको बता दिया कि ये उसकी वजह वजह ये थी। अभी भी अभी देखें, अभी पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे एपिसोड हुए हैं जिसमें मिनहाजुल कुरान जो है वो बहुत सारी चीजों में उनके फेलियर्स भी हैं, बहुत सारी चीजों में उनकी अचीवमेंट भी है कि कुछ बच्चे जो हमारे दीन के साथ जुड़े हैं वो मिनहाजुल कुरान का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था वो उसमें जाते रहे हैं, और वो दीन को उन्होंने सीखा है। लोकल लेवल पर तो जो उलमा आते हैं वो करते हैं। दूसरी मैं आपको बात बता देता हूँ, मिनाजुल कुरान में हमारा थोड़ा बहुत ये भी इख्तलाफ था कि मिनाजुल कुरान के जो उलमा कराम थे वो अपने आप को डायरेक्टर गर्दानते हैं, वो अपने आप को मेरे दफा मेरी मेरे साथ ये मुकालमा हुआ मिनाजुल कुरान के, हमारे जब मैं प्रेसिडेंट था मिनाजुल कुरान का, तो मुकालमा ये हुआ था कि मैं उन्हें कहता था कि हजूर आप नमाज पढ़ाने में अक्सर कोताही करते हैं, लेट आते हैं। तो उन्होंने कहा कि गोंदल साहब आपके 600 मेंबर हैं, आपको नमाज पढ़ाने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, आई एम डायरेक्टर ऑफ द मॉस्क नॉट अ मौलवी।
अजीब बात है जी, नमाज पढ़ाना तो फख्र की बात है।
सर मिनाजुल कुरान में इनका स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि ये डायरेक्टर है, ये मौलवी नहीं है। तहरुल कादरी साहब भी अपने आप को मौलाना नहीं कहलवाते, तहरुल कादरी साहब भी अपने आप को मौलवी नहीं समझते हैं, वो तो जो है वो क्या कहते हैं
वो तो स्कॉलर हैं, चले मजहबी स्कॉलर हैं आप कह सकते हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब, लेकिन ये जो डायरेक्टर हैं तो फिर बाकी जो मुक्तदी हैं ये सारे मुरीदैन हैं।
बस सर, अब मैं क्या क्या छेड़ूं और क्या क्या आपको बताऊं। ये मुरीदैन की ही वो सनफ समझते हैं, मिनहाजुल कुरान का एक सेटअप है कि वो अपनी जब भी कोई स्पीच, जब भी कोई गैदरिंग, वो सबसे पहले ताहिरुल क़ादरी साहब का आलाप अलापते हैं, उसके बाद दूसरी को बात करते हैं। तो वो लोगों को, अफराद को, दोस्तों को वो मुरीदैन की सेंस में ही वो बनाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे मुरीद भी हैं जो मिनहाज के नाम पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। वो हर जगह पे हैं, वो शायद डेनमार्क में भी होंगे, वो नॉर्वे में भी होंगे। लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ लर्न किया, हमने एक खासा क्लोजली स्टडी किया मिनहाजुल कुरान को। तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो अपनी किंगडम कायम करना चाहती है इस्लाम के नाम पर, और वो हमारे जैसे मासूम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब उस किंगडम के दो जो है ना वारिस हैं, ताहिरुल कादरी साहब के दोनों बच्चे। क्योंकि आप मिनहाजुल कुरान की कोई भी चीज को छेड़ लीजिए, आप उन दोनों बच्चों से पूछ कर कोई उनकी उन्हें पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरूसियत जो है कादरी साहब ने अपने किंगडम में अपनाई हुई है, जबकि वो जब उनका काफिला चला था इस्लामाबाद की तरफ, तो उनका नारा ये था कि मैं पाकिस्तान से मरूसियत को खत्म करना चाहता हूँ। और अब उन्होंने, उनके दोनों बच्चों ने पूरी किंगडम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनकी पूरी फैमिली ओन करती है। ये किंगडम जो बनी है, ये मेरे और आपके पैसों से बनी है हुजूर। ये जो किंगडम बनी है मिनहाजुल कुरान की, ये मेरे और आपके पैसों से बनी है। लेकिन उसके मालिक जो है, वो जो हुजूर के जो साहबजादगान है, जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जो पूरी दुनिया में घूमते हैं मेरे और आपके पैसों से, क्या ये कौन सी इस्लामाइजेशन है? मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए।
लेकिन गोंदल साहब, आप सदर रहे, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ सवाल करके। आप सदर रहे तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जब नॉर्वे जाते थे तो उनकी बड़ी मुलाकातें नज़र आती थी, जो मीडिया हमें बताता था कि बड़े बड़े लीडरान से मिल रहे हैं, बड़े मतलब है कि पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, इवन के जहाँ के वज़ीर आज़म जो भी होता था उन तक इनकी अप्रोच होती थी। ये क्या बात है?
नॉर्वेजियन सर, देखें हमारे जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है नॉर्वे का, वो तो ताहिरुल कादरी साहब को बड़ी एक्सट्रीमली हाईली प्रोफाइल पोजीशन पे बताते भी हैं और समझते भी हैं, और वो उनके लिए यहाँ एक नेटवर्किंग या ब्रिज बिल्डिंग का काम भी करते रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले पिछले 2-4 साल पहले, 3 साल पहले, जो डेनमार्क में एपिसोड हुआ था, उसके बाद नॉर्वे में एक सेमिनार हुआ एक सिटी के अंदर, और वहां जो है कादरी साहब स्टेज पर बैठे हुए थे, और नॉर्वेजियन कल्चर मिनिस्टर वहां मौजूद थी, और उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा, उन्होंने अपनी स्पीच में यह कहा कि हमारे दरमियान भेड़ की खाल में भेड़िए मौजूद हैं, जो बात अमल कुछ और करते हैं और बातें कुछ और करते हैं, और ये उनका डबल मॉरल है। ये उन कल्चर मिनिस्टर ने कादरी साहब स्टेज पर बैठे हुए थे तो बात कही। तो ये इसका इससे क्या मतलब है? और उसके बाद कादरी साहब ने एक लफ्ज भी उन्हें नहीं कहा। इसकी इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप YouTube के ऊपर ये देख सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। अखबार की मैं आपको कटिंग भिजवा जाता हूँ जिसमें ये बात लिखी हुई थी। कादरी साहब स्टेज पर बैठे थे और वो खतून कल्चर मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे कादरी साहब के मुतल्लिक ये बात कर रही थी।
ये कह रही थी कि भेड़ की खाल में भेड़िया बैठे हुए हैं।
भेड़िया है, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि भेड़ की खाल में भेड़िया हैं, जो करते जिनके अमल कुछ और हैं और वो करते कुछ और हैं। तो इसका इशारा आप समझ सकते हैं कि किस तरफ था।
कुंदन साहब, आते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जहाँ भी हुए, मैं डेनमार्क की पहले बात करूँगा चूंकि मैं यहाँ मौजूद था जब ये इलेक्शन हुए, तो दूसरी पार्टियों के लोग मेंबर्स बने, दोस्ती यारी में लोग मेंबर्स बने और आपस में लोग डिवाइड हो गए। दो ग्रुप थे, दो ग्रुप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, एक इंसाफ पैनल था और एक इंडिपेंडेंट टाइगर्स थे। दोनों ने बड़ी मेहनत की। पहले जो है वो इन्होंने शुरू किया इंडिपेंडेंस टाइगर वाल यूनाइटेड टाइगर वालों ने या इंडिपेंडेंट टाइगर वालों ने, तो उन्होंने अच्छी कंपेन चलाई। पहला राउंड तो ये जीत गए थे, दूसरे राउंड में जब इलेक्शन हुए डिले हुए मुहर्रम की वजह से हुए, और उसके बाद जो है वो दूसरा पैनल जो है वो जीत गया। लेकिन स्टिल जो टेंशन जो है इस वक्त तक जो है वो बरकरार है। मेहमान भी दो आए हुए हैं पीटीआई के, तब भी जो है छोटी मोटी जो है वो लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जो है वो टेंशन जो बरकरार है। तो मैं आपसे नॉर्वे की बात करूँगा। फ्रांस में भी इलेक्शन हुए तो यही कुछ हाल हुआ। तो पीटीआई तो एक बड़ी जमात है। आज भी मैं कहता हूँ कि डेनमार्क में इस वक्त भी अगर कोई बड़ी जमात है तो वो तहरीक इंसाफ है। आप क्या कहेंगे इन सारे सिनेरियो में?
सर मैं खुद पीटीआई का मेंबर भी हूं और पीटीआई का वेलविशर भी हूं और अपने आप को खान साहब का सिपाही कहता हूं। हम खान साहब के विजन के साथ हैं और इस मुल्क मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। जब जहां सब पार्टियों को हम आजमा चुके हैं तो हम देखते हैं कि एक तरह के इंसाफ एक ऐसी पार्टी रह जाती है जिसका लीडर जो है वो एक विजनरी शख्सियत है और वो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के स्ट्रक्चर में बहुत सारी हर्डल्स हैं जो खान साहब अनफॉर्चुनेटली जो वो चाहते हैं वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए। ओवरसीज पाकिस्तानी की जहां बात है हम सब यही सोचते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इसलिए हमने यहाँ एक यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि हम तरीके इंसाफ के मेंबर भी हैं और तरीके इंसाफ के मेंबर बनकर मकसद सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए हम नॉर्वे में रहते हैं, नॉर्वे में हम एक बड़ी खूबसूरत डेमोक्रेटिक चीजों को देखते हैं, जमहूरियत को परवान चढ़ते हुए हम अपने इर्द गिर्द अपने माहौल के अंदर हमने बड़ी बारीक बीनी से देखा है। हम समझते हैं कि जमहूरी अमल में जो हम जमहूरियत पाकिस्तान में चला रहे हैं या जो पीटीआई इंटरनल जो है वो किस तरह जमहूरी रवैयों को जिबा कर रही है वो इस तरह के देखें। हमें सर यूरोप में ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के वेलविशर हैं उन्हें कहा जाता है कि अगर आप पीटीआई के मेंबर हैं तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हिस्सा बनिए और आप मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनिए। हम ये चाहते हैं ठीक है, लेकिन हमें तो कहते हैं कि आप इलेक्शन लड़िए, जबकि हमें ट्रीट करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाने के लिए उन्होंने एक सिलेक्टेड बंदा हमारे ऊपर बिठा दिया। ये कैसे मुमकिन है कि एक जमहूरी प्रोसेस के अंदर जमहूरियत के साथ इलेक्शन लड़ने के बाद हम इलेक्ट हों और हमारे ऊपर एक सिलेक्टेड बंदा जिसका नाम अब्दुल्ला रियाड है वो बिठा दिया जाए हमें डिक्टेट करने के लिए, हमें हमारे ऊपर चीजों को इम्पोज करने के लिए। हमसे मैं अभी जाती तौर पर यह समझता हूं कि पीटीआई का ये जो इंट्रा पार्टी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये पार्टी की डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये पार्टी को चलाने के लिए नहीं है, ये पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, ये सिर्फ इनोसेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे लेने के लिए। इसीलिए ये हमें हमारे हमारे दरमियान ग्रुप्स बनाते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं और लड़ाने के बाद हम अपने अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और नमूदो नुमाइश और ये चौधरीज्म और ये वडेराइज्म हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम यहाँ भी वो जो अपनी इनहेरिटेड जो कल्चरल वैल्यूज हैं अपने साथ लेकर आए हैं, हम जिद में आकर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में और सदर और प्रेसिडेंट का टाइटल अपने नाम के साथ लगाने के लिए हम डॉक्टर रियाड़ की जो जो क्रिमिनल मैं समझता हूँ जो सोच है उसका हिस्सा बन जाते हैं और वोटिंग प्रोसेस में आकर एक दूसरे से ज्यादा मेंबरशिप करके डॉक्टर रियाड़ को ये बताना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट फ्रेंड, आई एम द वेल विशर, और वो हमें इस्तेमाल करते हैं। डेनमार्क में भी यही हुआ कि 3500 मेंबर सर, 3500 मेंबर, ये करोड़ों में अमाउंट जाती है पाकिस्तान जब आप भिजवाते हैं तो उन्होंने ये हासिल की। और मुझे सिर्फ ये नहीं आज तक पता चल सका कि मेंबर बनने के बाद आप जब इलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास एक सिर्फ नोटिफिकेशन आता है जिसे कि जी आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आप जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। इसके अलावा हमारा जो पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है, पीटीआई का जो मैनिफेस्टो है, उसमें कतई कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये जो सदर और जनरल सेक्रेटरी बने हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनका पाकिस्तान में पार्टी के साथ क्या जो रिलेशन है, इनकी जो किस किस्म की जॉब का जो ये क्या जॉब सर अंजाम देंगे, ये ओवरसीज में बैठकर पार्टी की क्या खिदमत करेंगे मासवाय ये पैसे इकट्ठे करने के और मेंबरशिप फीस देने के अलावा। तो मुझे समझ नहीं आती, मैं नॉर्वे में हम देखें आप पार्टी का हिस्सा बनते हैं, आप भी पार्टी की मेंबर बनते हैं, पार्टी आपको इनवाइट करती है मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ डिबेट्स में, मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जो बात होती है उसके ऊपर वो आपको बुलाती है। जब आप बात करते हैं, आप अपना पोलिटिकल टैलेंट शो करते हैं तो पार्टी आपको आगे लेती जाती है, पार्टी आपको अगले इलेक्शन में कहती है जी आप काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़े, जब आप काउंसलर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पार्टी आपको कहती है कि अब अगले टर्म में हम आपको पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। तो ये वो एक चैनल है जो आगे चलता है। हमारे यहाँ पीटीआई ओवरसीज का कतई कोई चैनल नहीं है, कतई कोई सेटअप नहीं है, कतई कोई पाकिस्तान में किसी किस्म की एक एक अम्बेसी में आप एक शख्स की किसी मद में कोई मदद तक नहीं कर सकते, क्योंकि आप पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं और आपका कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई चैलेंज ला चैलेंज नहीं, जो चैनल नहीं है किसी किस्म का, मुल्क के साथ, पार्टी के साथ, पार्टी के अफेयर्स के साथ। हो सक हो अगर ये ही हो कम से कम कि जो ओवरसीज में आप प्रेसिडेंट बनाया है उसको कल पाकिस्तान में काउंसलर का इलेक्शन करने के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए, कि क्योंकि यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। चैनल तो ये बनता है कि जो यहाँ से सीखते हैं उन्हें डायरेक्ट पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन में लेके जाया जाए, पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सीटें मुख्तस जो अभी तक हो नहीं पाई वो हो, जहां हम अपना इनपुट जाके दे सके, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल पर बात कर सके, ओवरसीज से मुतलक जो लेजिस्लेशन होती है वहां हम अपना हिस्सा डाल सके, वहां हम अपना इनपुट दे सके। इस किस्म की पीटीआई जो एक मॉडर्न पार्टी हम समझते हैं उसने भी ऐसी कोई कावश नहीं की। अभी तक हमें पीनट्स और हमें लॉलीपॉप्स और चीजों पे लगाया हुआ है। अभी भी कल आपने देखा, 2-4 दिन पहले की बात है कि डॉक्टर यार साहब ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने अंदिया दिया कि हम फरवरी के अंदर पीटीआई का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। अब उस कन्वेंशन में कतई ये नहीं लिखा हुआ कि उसका एजेंडा क्या है, उसमें कतई नहीं लिखा हुआ कि वहां हम इन इन मौजूदात पर डिबेट करेंगे और हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये कन्वेंशन किया जा रहा है जिसमें खान साहब जो है वो स्पीच करेंगे। अब बताएं कि ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है, ये किस किस्म की चीजें हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अब हजारों की तादाद में यहाँ से टिकट लेकर अपनी एक्सपेंडिचर्स को खर्च करके अपनी अपनी फाइनेंशियल जो सोर्स के साथ वो वहां जाएंगे और वो वहां तालियां बजाकर वापस आ जाएंगे। क्या कन्वेंशन इसलिए किए जाते हैं कि अभी तक उस कन्वेंशन का कोई एजेंडा नहीं है, उसमें कतई ये नहीं बताया गया कि वहां हम ओवरसीज के मसाइल पर क्या बात करेंगे, उसमें ये नहीं बताया गया कि ओवरसीज के मुतलक मुस्तकबिल में हमारी क्या प्लानिंग्स हैं, उसमें ये नहीं बताया गया कि ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का किस तरह हिस्सा बन सकते हैं। बस ये बताया कि यही बताते हैं हमें कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इनकी रेमिटेंस से बुलक चल रहा है और हम आपको सलूट करते हैं। इस इन तीन चीजों के अलावा पाकिस्तान के ओवरसीज के लिए आज तक किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। हमारे ओवरसीज सऊदीया और मिडिल ईस्ट में बड़ी बड़ी ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो गैर इंसानी है मेरे ख्याल में, लेकिन उनके लिए कभी भी ऐसे इकदाम नहीं किए जाते। आज आके उनको कभी कभी जेलों से छुड़ा दिया जाता है कि जी हम आपको जेल से छुड़ा दें। यूरोप में बैठे हुए पाकिस्तानी अब इतनी कई अरसा से कुछ अरसा से ये मसाइल है कि अब पाकिस्तानी अपने वतन कैसे जाएं, उसके लिए आज तक अभी तक पीआईए या दूसरे ऐसे किसी भी मामले में ऐसी अभी तक मजीद जो आगे बात नहीं बढ़ पाई कि अभी तक अब डेड बॉडी पाकिस्तान भिजवाने के मसाइल हैं। हमारे यहाँ अभी 2-4 दिन पहले एक हमारे एक अजीज है उनकी डेथ हुई और उन्होंने बड़ी कावश की कि पाकिस्तान में बॉडी कैसे भिजवाई जाए, और उन्होंने उन्होंने बताया कि जी 3 से 4 दिन जरा टर्किश एयरलाइन, कतर एयरलाइन या एमिरेट्स के जरिए वो भिजवाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि 4-5 दिन जो है उसमें वो लगने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मसाइल हैं हम ओवरसीज के जिन्हें जो हल तलब भी हैं उनको एड्रेस भी किया जाना चाहिए लेकिन नहीं किया जा रहा। और दूसरे मसाइल हैं, अभी तक हमारे यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को बाहर भिजवाया जाए। अभी तक ये कावश पीटीआई ने भी अभी ये कावश नहीं की कि पाकिस्तान के बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन देकर उन्हें ऐसे मौके इंडस्ट्री लगाकर उन्हें अकोमोडेट पाकिस्तान में किया जाए। माओं के बच्चों को बाहर भेजने की कावश तो की जा रही है लेकिन उनके बच्चों को माओं के पास रखने की अभी भी कावश, अभी भी उन्होंने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, अभी ऐसी कई कई कोई ऐसे मेजर्स नहीं अडॉप्ट किए ना लिए हैं जिससे पाकिस्तान में पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो अपने मुल्क में रहें और मुल्क को तरक्की मुल्क की तरक्की का हिस्सा भी बने और अपनी फैमिली और खानदान के साथ रहें। अभी तक यही काविश है कि हमारे बच्चे मैक्सिमम बाहर जाएं और वहां से वो रेमिटेंस और जर मुबादला की सूरत में पैसा पाकिस्तान भेजें। ये फेलियर की बातें हैं जो अभी तक पीटीआई ने भी इनको एड्रेस नहीं किया। जहरा बहुत
गोनल
सारे
साहब
चैलेंजेस
आपने
हैं
जा
लेकिन
फरमाया, गोनल साहब देखें یہ جو اوورسیز ہیں یہ دنیا کی ماڈرن ترین, جہاں میں اس کے ای یو کی بات کروں گا, ماڈرن ترین جمہوریت میں یہ رہتے ہیں, اس کے باوجود یہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر عبداللہ ریاض کا کہ وہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب بلدیہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو فنڈ تو لینا ہے. اوورسیز میں ووٹیں تو بڑی زیادہ ہیں, بلدیہ کے الیکشن میں جب ہوں گے تو ووٹیں تو بہت زیادہ جو ہیں وہ اوورسیز کی باہر پڑی ہوئی ہیں, لاکھوں کی ووٹیں ہیں, تو ووٹیں تو لینی ہیں. اس کے بعد سب غلاموں کی طرح جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کوئی بندہ بولے نہ گئے. گوندل صاحب ایک حل ہے, یہاں بھی ایک کمپین چلی تھی, یہاں سے بھی پروٹیسٹ کیا گیا, یہاں سے بھی وزیر اعظم پاکستان کو کہا گیا کہ یہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض ایک واسرائے جو آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے, لیکن اس کو کوئی تبدیل نہیں کرتا. یہاں اگر ڈیمونسٹریشن پاکستان امبیسی کے سامنے کی جائے اور پی ٹی آئی والے پروٹیسٹ کریں کہ اس شخص کو اتاریں, اس سے ہماری جان چھڑوائیں, یہ ہمیں آپس میں ڈیوائڈ کر رہا ہے, اس کا مقصد صرف پیسے اکٹھے کر کے آپ کو کہتا ہے دیکھو جی میں نے خان صاحب آپ کے لیے کتنا فنڈ اکٹھا کر دیا, یہ نہیں بتاتا کہ کتنی کمیونٹی آپس میں ڈیوائڈ ہوئی, کتنی فیملی آپس میں جو ہے وہ ناراض ہوگی, کتنے کتنے سال یہ ناراضگیاں چلیں گی. جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پی ٹی آئی کی. میں آپ کو بتاؤں کہ آج جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا, دو معزز ایم پی ایز آئے ہوئے ہیں, ایک ہی علاقے سے تعلق ہے, ایک ہی علاقے کے لوگ رہتے ہیں, تو اب پی ٹی آئی خود اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے آج کہا میاں اختر ایاز صاحب سے کہ آپ پولیس میں رہے, آپ ان کو آج اکٹھا کریں, آپ دونوں ایم پی ایز آئے ہیں, بڑا نام ہے آپ دونوں کا, ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کر دیں. کہتے ہیں دیکھتے ہیں جی, کوشش کرتے ہیں. اپنا گوندل صاحب مزہ آتا ہے کہ جب کمیونٹی ڈیوائڈ ہوتی ہے تو پھر ہی ریسپیکٹ ملتی ہے.
سر یہ دیکھیں, ہم نے یہ جو آپ نے چیزیں ابھی بتائی ہیں, ہم نے پچھلے سال سوئٹزرلینڈ کے اندر برن کانفرنس کا انعقاد کیا تھا, اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو ڈیموکریٹکلی چلانا چاہتے ہیں, ہم یہ رویہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ریاض جیسے لوگ ڈکٹیٹر بن کر پارٹی کو ٹریٹ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ جو یورپ میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنے نمائندے خود چوز کریں. سر یہاں تک ابھی آپ کے سامنے جو ڈپٹی سیکرٹری ہے یورپ کا, وہ پاکستان بیٹھے ہوئے ڈکٹیٹر نے سلیکٹ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں یہاں, یہ خود جو ہے جتنے بھی جو چیپٹرز ہیں یہ خود اپنا ایک نمائندہ چوز کریں کہ ہمارا ڈپٹی سیکرٹری کون ہوگا. جو برن ڈکلیریشن ہم نے پاکستان میں ان کو بھجوائی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے نمائندے خود چوز کریں گے, لیکن اس کے اوپر قطعی کان نہیں دھرا گیا. ہم نے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری عامر کیانی صاحب سے زوم میٹنگ کی, اور زوم میٹنگ میں نے ببانگ دہل یہ احتجاج کیا کہ خدارا ہمیں ہمارے رحم پر چھوڑیں, ہمیں اپنے نمائندے خود چوز کرنے دیں, اور کیانی صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کچھ کرتے ہیں. آج تک اس بات کو ایک سال ہو چکا ہے, قطعی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. ہم نے یہ بھی انہیں کہا کہ یہ جو آپ دو چیپٹر جو گروپ بنا کر ایک دوسرے کو لڑا دیتے ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے. جو جیت جاتا ہے وہ دوسرے جو ہار جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. متناسب نمائندگی کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ لایا جائے, جو جتنے پرسنٹ ووٹ لے اتنی اس میں پارٹیسپیشن ہو. اس کو بھی انہوں نے ابھی تک ڈاکٹر ریاض جو ہے وہ ایک بیریئر ہے ہمارے درمیان اور خان صاحب کے درمیان, وہ ہماری کوئی بھی بات ان پٹ جو ہے وہ خان صاحب یا جو ہائر لیڈرشپ ہے اس تک جانے نہیں دیتا. ہم اس بات کا احتجاج پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں کہ خدارا ڈاکٹر ریاض سے ہماری جان چھڑائی جائے. انہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کا رویہ کیسے پاسبل ہے کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ایک جمہوریت پسند لوگوں کو آپ ڈکٹیٹوریل رول کے ساتھ ٹریٹ کریں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن خدا انفارچونیٹلی ہم خود چونکہ اتحاد بین الانصافین کے درمیان فقدان ہے, ہم خود اتحاد اپنے اندر پیدا نہیں کر پائے, ہم خود چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے ڈاکٹر ریاض جو ہے اس کی جو ہے نا اس کا انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں, اس کی جو ہے نا باتوں میں آ جاتے ہیں, اور اپنے درمیان ہی اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. ناروے میں سر ایسا ہوا کہ ہم نے برن ڈکلیریشن جو ہم نے تھی اس میں یہ تھا کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے اگر اس کو جمہوری لیول پر سر انجام نہیں دیا جاتا. تو میں نے اپنے ناروے کے دوستوں سے یہ گزارش کی कि हमें इलेक्शन का बॉयकॉट करना है, लेकिन हमारे दरमियान कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमें जो जो मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मुत्तफिका तौर पर फिर ये फैसला हुआ कि हम मिनिमम मेंबरशिप पर इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अगर आपके यहाँ 100 मेंबर्स हैं तो आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो हमने मेरे जो हमारे जो जो हमारे नॉर्वे में जो अफराद दोस्त इलेक्शन लड़ना चाहते थे, फिर उनसे हमने गुजारिश की कि आप मिनिमम मेंबरशिप कीजिए, ताकि डॉक्टर रियार को ये एक मैसेज आए कि लोग नाला है आपकी स्ट्रेटेजी से, आपकी इसकी इस गंदी आपकी जो सियासी सोच है उससे, लिहाजा हम अब इसका हिस्सा तो बनेंगे लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेंबरशिप नहीं देंगे। अब हमने तकरीबन यहाँ पिछले साल 1000 समथिंग मेंबरशिप हुई थी, और इस साल हमारे इस रवैये की वजह से, हमारी इस गुजारिश की वजह से 400 समथिंग मेंबरशिप हुई है, ठीक है। और इसके बरक्स डेनमार्क में 3500 मेंबरशिप हुई है, क्योंकि वहां के जो दोस्त हैं वो डॉक्टर यार की चपन जो 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 बातें हैं उसमें आ गए, और उन्होंने मैक्सिमम मेंबरशिप करके अपना प्रूव किया कि हम आपके जनाब बड़े जो आपके सपोर्टर्स हैं। अभी वो खुद ही जिन्होंने 3500 मेंबरशिप की थी, अब वो खुद डॉक्टर यार के रवैये से नाला है। अब खुद इस बात को आप देखिए कि पूरे यूरोप के अंदर स्पेन में 4000 के राउंड अबाउट जो है वो मेंबरशिप की गई है। तो ये हम एक्चुअली खुद ही, मैंने आपको सबसे पहले ये बात कही थी कि हम जो अपनी जो पाकिस्तान की जो सियासी सोच है, जो चौधरीज्म है, जो फ्यूडलिज्म है, उसको यूरोप में भी लेकर आए हैं, और अभी तक हम उस स्ट्रक्चर से, उसकी एक छोटी सी वजह है कि शायद हम लोकल सोसाइटी से हमारा इंट्रैक्शन नहीं हुआ सियासी तौर पर। हम लोकल सोसाइटी यूरोप में जो रहते हैं वो दूर रहते हैं, हम अपना एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो जो इंटीग्रेशन है वो हो नहीं पाई, जो यूरोप का सियासी जमहूरी जो अमल है उसका हम हिस्सा नहीं बन पाए, इसलिए हमारी सोच में भी तब्दीली नहीं आ सकी। जिनकी सोच में तब्दीली आ गई है वो इस जमहूरी अमर के खिलाफ है जो डिक्टोरियल है पाकिस्तान के जो डॉक्टर यार साहब जिससे चला रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी इस प्रोसेस में है कि वो पाकिस्तान और यूरोप की जो जमहूरियत है उसको अभी वो उनका तकाबली जायजा लेने में उनका जो रवैया है वो बड़ा सुस्त है, इसलिए वो इसका हिस्सा बन जाते हैं और डॉक्टर यार का वो। लेकिन बात ये आपकी बड़ी दुरुस्त है कि डॉक्टर यार की जो डिक्टोरियल पॉलिसी है वो यही है कि इनको आपस में लड़ाकर अपने मकासद को हासिल किया जाए, और वो एक ही मकसद है, वो है पैसा। पैसे के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी के किसी भी अमल से, किसी भी फेल से पीटीआई तहरीक इंसाफ को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पिछले, मैं पीटीआई का 10 साल से मेंबर हूं और बकायदा मेंबर हूं, तमाम एक्टिविटीज में हिस्सा लेता रहा हूं, हर महाज पर यूरोप में जितनी भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस हुई है वहां हमने पार्टिसिपेट भी किया है, अपना जाके इनपुट भी दिया है, और हर जगह पे हमने बात भी किया है। चौधरी फवाद साहब इधर आए थे, उनको अपने यहाँ मसाइल बताए, दूसरे जो पॉलिटिशियंस यहाँ आए उनको अपने मसाइल बताए, और यूरोप के दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तानी पीटीआई की जो पर्सनैलिटीज आती हैं, मेंबर्स आते हैं, उनको भी अपना इनपुट दिया जाता है, उन दोस्तों से भी बात की जाती है कि आप उन्हें अपने मसाइल के मतलब सब इधर यस सर कहकर जाते हैं। सब जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं वो कहते हैं जी मसला ही कोई नहीं है, हम जाते एयरपोर्ट से जाते हुए भी हम जो है खान साहब से जाते साल इस बात पर बात करेंगे। अभी गवर्नर पंजाब आए हुए थे सरवर चौधरी साहब, हमारे दोस्तों ने उनके साथ बैठकर, आपको मैं वीडियो लिंक भिजवा सकता हूं जो उन्होंने वहां बातें की, ये सारी बातें जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये उन लोगों ने चौधरी सरवर साहब ने भी बातें की और अपने मसाइल पर बात की, उनके मसाइल के हल पर बात की। उन्होंने भी ये कहा कि मैं जी फौरन जाकर खान साहब से बात करूंगा। अब वल्ला बिल्ला उन्होंने बात की है या नहीं की ये मेरे इलम में नहीं है, लेकिन हर शख्स से हम बात करते हैं, लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू है, और इन्हीं मसाइल से खौफजदा होकर हमने अब ये सोचा है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूरोप में बनाए यूनानिमसली जिसमें तमाम पाकिस्तानी अपना इनपुट भी दे सकें, और हम अपने मसाइल का हल अब इस सूरत में सोचें कि हमने पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स के नाम से एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाई है जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी बाकी ओवरसीज पाकिस्तान के मसाइल को एड्रेस करना और उन्हें हल करना है। और ये अब देखिए हम किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन ये बर्लिन के अंदर इसको हमने रजिस्टर करवाया है, और फ्रांस से इसके पहले प्रेसिडेंट है, और जनरल सेक्रेटरी इसके जर्मनी से हैं, और मैं उसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। پاکستان اوورسیز رائٹس کے محاذ سے اب ہم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کی طرف ایک اگلا قدم لے چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔
گونل صاحب، یہ ساری باتیں آپ نے جو بتائیں اپنی جگہ درست ہیں۔ ڈیموکریسی تو یہ کہتی ہے کہ جو جو لوگ، میں کہتا ہوں کوئی بھی انیشیٹو لے، چونکہ ہم میڈیا میں ہم تو انفارمیشن دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی پولیس مین ہیں، یہ سارے لوگ اپنی پاک امبیسی کے سامنے جا کر ڈیمونسٹریشن کریں کہ ایک شخص اوورسیز کو آپس میں لڑا رہا ہے، پیسے اکٹھے کر کے اپنی نوکری کے لیے کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے نا، بے شمار ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب کے جو ہے میر جعفر اور میر صادق، اس ہمارے شہر میں بھی غدار موجود ہیں، اسی طرح آپ کے شہر میں غدار موجود ہیں، اسی طرح فرانس میں، اٹلی میں، جرمنی میں، ہر جگہ غدار موجود ہیں۔ انہوں نے ٹٹو پالے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر عبداللہ ریاض کو یا ہمارے پروگرام کی کاپیاں بھی مہیا کریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو غداری کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا اپنا اکاؤنٹ، جس ملک میں پارٹی ہوتی ہے وہیں اکاؤنٹ ہونا چاہیے، وہی ان کا نظام ہونا چاہیے، وہی لوگ الیکشن کرانے والے ہوں، وہی الیکشن کرا کے اس کے بعد جو رپورٹ جو ہے وہ ہیڈ آفس میں بھجوا دیا کریں۔
سر، دنیا میں یہ ہوتا ہے، دنیا میں یہ ہے، ایک روش ہے کہ پارٹی فنڈ جو ہے وہ پارٹی ورکرز کی فلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پارٹی فنڈ جو ہے پارٹی کے افراد پر خرچ کیا جاتا ہے، پیسے تو ہم خرچ کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ڈنمارک نے 3500 ممبر شپ کو 35 کو آپ 36 IRS آپ ملٹیپلائی کیجئے، اٹ از اے ہیوج اماؤنٹ۔ لیکن پارٹی کے جتنے بھی آپ دیکھیں، اگر ڈنمارک میں جلسہ جلوس ہو رہا ہے تو وہ اپنی دوبارہ وہ اپنی پاکٹ سے کریں گے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی فنڈ سے، یہ فنڈ جو ہے جو اکٹھا کیا گیا تھا ڈنمارک میں، وہ ڈنمارک میں ہی خرچ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ سارے کا سارا پارٹی فنڈ میں چلا گیا، اور پارٹی کا فنڈ کا ہمیں کبھی نہیں بتایا جاتا۔ دیکھیں، جب آپ ممبر بنتے ہیں تو اس میں یہ ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جو لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ممبرشپ فیس ہے وہ آپ کی کانسیکوینسی میں خرچ کی جائے۔ یہاں آپ اپنی کانسیکوینسی لکھیں کہ آپ پاکستان کے کس علاقہ سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں ٹک کرتے ہیں کہ میں جی کانسیکوینسی میری جو ہے، حلقہ جو میرا ہے وہ 32 ہے، این اے 32 ہے۔ آپ کو کبھی نہیں یہ بتایا گیا دوبارہ کہ این اے 32 میں آپ نے جو ممبرشپ بھیجی تھی وہ ہم نے اس مد میں، اس حلقے میں یہ خرچ کیا۔ صرف فارمیلٹیز ہیں سر، صرف فارمیلٹیز ہیں، ایک فارم بنایا ہوا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آج تک ہمیں تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارا جو فنڈ ہے وہ پاکستان میں کس مد میں خرچ کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ذمہ داری ہے پارٹی کی کہ وہ پارٹی ورکرز کو بتائے کہ آپ کا جو فنڈ ہے وہ یہاں خرچ کیا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں کبھی بھی ان پٹ دی گئی ہو، لیکن ابھی ایک انہوں نے سرکولیشن جاری کیا ہے کہ تمام جو پی ٹی آئی کے چیپٹرز ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں پارٹی کو رجسٹر کروائیں، اور ناروے میں جو پارٹی ہے وہ ابھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں ہم اپنا جو پارٹی فنڈ ہے وہ قطعی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں دیں گے، ہم ادھر ہی اکٹھا کریں گے اور ادھر ہی خرچ کریں گے۔ اور یہ میری گزارش بھی ہے اپنے دوستوں سے کہ خدارا عقل کے ناخن لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یونائٹ ہوں، ہم اپنے معاملات کو خود دیکھیں۔ یہاں جتنی بھی یورپ کی جو سٹرکچر ہے پارٹی کا، ہم پارٹی سے نالا ہے، ہم پارٹی کے رویے کو درست کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پارٹی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد خان صاحب کے بازو بننا ہے، خان صاحب کی طاقت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان، خان صاحب کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسی لویل پرسنالٹی نہیں ہے جو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے بہتر سوچے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو میر جعفر ہیں، ڈاکٹر عبداللہ ریاض جیسے، یہ پارٹی کی جو پھلنے پھولنے کی جو روش ہے اس میں حائل نہ ہوں۔ ایسے لوگ جو پارٹی میں نکمے ہیں، ڈکٹوریل چیزوں کو پسند کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو ضرور ہٹایا جانا چاہیے، اور پارٹی کو جمہوری بنیادوں پر چلایا جانا چاہیے، جس میں ایک کارکن جو ہے وہی جا کے لیڈر بنتا ہے۔ ڈاکٹر ریاض کا فلسفہ یہ ہے کہ لیڈرشپ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے، آپ نے سیاست کو بڑی قربت سے دیکھا ہے، دنیا کے کس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی اوپر سے نیچے آتی ہے؟ پہلے انسان ممبر بنتا ہے، پھر وہ اپنے لوکل کمیونٹی میں کاؤنسلرشپ کرتا ہے، پھر وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں جاتا ہے، پھر وہ سوائی اسمبلی میں جاتا ہے، پھر وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنتا ہے۔ جتنی اس کے اندر سکلز ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ کارکن جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا آگے جاتا ہے۔ और ये साफ फरमाते हैं कि ये जो हमारे जो कारकुन है, जो नाला है हमसे, या जो मेरी डिक्टेटोरियल शिप से मेरे खिलाफ हैं, या मेरे खिलाफ बातें करते हैं, या पार्टी में बेहतरी लाना चाहते हैं, या जो पार्टी में जमहूरी सोच देखना चाहते हैं, ये खजां के पत्ते हैं। ये हजूर फरमाते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब कि ये खजां के पत्ते हैं, ये अगर पार्टी से निकल जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल हमारे पास नए ऐसे आ जाएंगे जमूरे जो मेरी हर बात को यस सर भी करेंगे, मेरी हर बात पर वो लबैक भी कहेंगे, और मेरे रवैये को एज इट मनोअन कबूल भी करेंगे। ये तो उसे पता है कि हमारे दरमियान ही कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए उसने हमें तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी मेंबर्स कारकुन और जो कारकुनों को उसने खजा के पत्ते कहा, और उसने ये भी कहा साथ कि ये कौन होते हैं मुझे डिक्टेट करने वाले, मैं तो लीडरशिप ऊपर से नीचे देखता हूँ, ये कौन होते हैं ऐसी बातें करने वाले। तो ये तो, लेकिन हमें सॉरी टू से, हमें अपने रवैयों को भी देखना चाहिए एज अ मेंबर कि हम ऐसे लोगों का आलाकार क्यों बन जाते हैं, हम ऐसे लोगों की क्यों मदद करते हैं, हम इसलिए इसलिए वो हमें इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए वो हमें हर तरह से मिसयूज भी करते हैं, और हमें आपस में लड़ाकर अपने अजायम और अपने गोल्स को अचीव करते हैं, और ये हर हर एवरीबॉडी नोज व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही वांट, एवरीबॉडी नोज इन होल ओवरसीज कम्युनिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद उसे कुछ ऐसे जमूरे, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको वो इस्तेमाल करके फिर वो अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर वो खान साहब को अपनी परफॉर्मेंस शो कर देता है। इस साल हमारा कभी उम्मीद थी कि हम खान साहब को ना ज्यादा मेंबरशिप देकर ये बावर कराएंगे कि खान साहब लोग आपके जो असिस्टेंट्स हैं उनके रवैये से नाला है, लेकिन हमारे ही दोस्तों ने फिर 3500 मेंबरशिप कर दी, 4000 मेंबरशिप कर दी, उधर डन अमेरिका और कनाडा में भी खासी मेंबरशिप हो गई। तो ये हमारे अपने रवैयों को भी हमें दुरुस्त करने की जरूरत है एज अ मेंबर, एज अ कारकुन।
गोंदल साहब, क्या 1400 साल पहले हम आज़ाद हुए? क्या अभी हम आज़ाद हैं?
बिल्कुल नहीं सर, अभी कहाँ आजाद है, अभी भी हम गुलामों की हमारी सिचुएशन है सर। आप सियासी तौर पर हमारे सियासतदानों ने शऊर हासिल करने ही नहीं दिया, एजुकेशन है सबसे बेहतरीन जरिया लोगों को शऊर देने का। अभी भी 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलिंग से बहुत दूर है, 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे। खान साहब ने कौन से ऐसे मेयर किए हैं कि कौन सा ऐसा एग्रेसिवली एडवेंचर किया है कि 2 करोड़ बच्चों को स्कूलों में कैसे लाया जाए? सबसे पहला काम बिल्डिंगें और रोड्स बनाने से भी बेहतरीन और खूबसूरत अमल यह है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। ये जो जापान और मलेशिया और इन मुल्कों ने तरक्की किया, ये सिंगापुर और कोरिया ने, ये इन्होंने मोटरवे पहले नहीं बनाई थी, उन्होंने पहले स्कूलिंग की तरफ जो है ना वो अपनी सारी तवज्जो दी थी, एजुकेशन। 2 करोड़ बच्चा सर इट्स अ ह्यूज अमाउंट जो स्कूल से दूर है। जब तक बच्चों को, अवाम को आप एजुकेट नहीं करेंगे, अवेयर नहीं करेंगे उन्हें, एजुकेशन से सर इंसान की जहनी तौर पर वो सिविलाइज होता है, उसे ताकत मिलती है, वो अपनी बात बबांगे दोहल कहता है। एक बंदा इलिटरेट बंदा, अनएजुकेटेड, उसके अंदर एक खौफ होता है और वो अपने खौफ की वजह से अपने लीडर्स को अपना मालिक समझ बैठता है, हालांकि ये मालिक नहीं होते, ये आपके वोट की मरहूने मेहनत होते हैं, आपके वोट की ताकत इन्हें किकआउट कर सकती है पॉलिटिक्स के पूरे सिस्टम से। लेकिन हमें एजुकेट इसलिए नहीं किया जाता कि इनको ये इनकी इनको ये ताकत ना मिल जाए, ये अपनी मर्जी से अपने अपने जो लोगों को सिलेक्ट ना कर बैठे। तो ये वो रवैये हैं 1400 साल से, अभी भी मुसलमान कम्युनिटी से पूरी दुनिया में अभी भी हम पीछे हैं जो सिविलाइज सोसाइटी है उससे बहुत ज्यादा, हालांकि हमारे पास एक दुनिया की खूबसूरत ताकत है और वो कुरान है। हम इस्लाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हमारा अमल तो ऐसा होना चाहिए कि हम दुनिया की तमाम कौमों से आगे निकल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ना दीन को फॉलो करते हैं, ना हम कुरान को फॉलो करते हैं, ना हम सीरत नबी को फॉलो करते हैं, हमने अपने ही एक एजेंडे बनाए हुए हैं जिस पर हम चल रहे हैं और फेलियर की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने ना हम दीनदार हैं, ना हम अच्छे 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 माशरे के अफराद हैं, और हम इन्हीं फ्यूडल्स को, इन्हीं सर 70 साल तो पाकिस्तान को बने हुए गए, 70 साल में अभी तक हमारी जो जो पॉलिटिकल जो जो है सेटअप वो वैसे का वैसा है। अभी भी फ्यूडलिज्म जो है सोसाइटी का हिस्सा है, अभी भी वडेरा जो है वो अपने लोगों को ट्रीट करता है, अभी भी जो चौधरी साहब है वो अपने गांव के तमाम अपराध को वो हैंडल करते हैं। लोगों के पास अपनी कुवत इरादे या ताकत ही नहीं है कि वो अपने इरादे के मुताबिक कोई अपना बंदा भी चूज कर सके। अभी तक हमें चीनी और चावल के उसमें फंसाया हुआ है, अभी तक हमें दो दो टके के जो है ना बिरयानियों और चीजों में फंसाया हुआ है, अभी तक हम वोट इसी तरह दे देते हैं कि जी हमने फलाने ने हमें थाने में एक दिन ये मेरी मदद की थी। ये चीजें हैं जो हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, और ओवरसीज इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ओवरसीज अनफॉर्चुनेटली उनकी उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं जो वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसे, हम भी चौधरीज्म की वजह से, हम देखें अभी मेहमान आते हैं पाकिस्तान से, हम उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, हम उनकी दिन रात खिदमत करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे लिए। लेकिन हमारे मसाइल ये है कि मेरा गोल ये है कि मेरी जो मेहमान आया मेरे साथ उसकी सलाम दुआ हो जाए, जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरा अगर कोई मसला, इंडिविजुअल मसला हो तो वो हल हो जाए। हम इज्तमाही तो सोच रखते ही नहीं है। हर आदमी तस्वीर खिंचवाना चाहता है चौधरी साहब के साथ, हर आदमी तस्वीर खिंचाना चाहता है उस MNA MPA के साथ, स्पीकर असेंबली के साथ, कि इसके साथ मेरी सलाम दो हो जाए और मैं दोस्तों को, अपनी कम्युनिटी को ये बता सकूं कि मेरी इसके साथ लैग सलाह। बात यह है कि हमें इज्तमाही सोच की तरफ जाना चाहिए, हमें इज्तमाही मसाइल को हल करने की तरफ जाना चाहिए, हम उनसे जो अहदो पैमा ऐसे करने चाहिए जिससे पूरी कम्युनिटी को फायदा हो, पूरी सोसाइटी में बेहतरी आए। मैं इधर नॉर्वे में पॉलिटिक्स करता हूँ थोड़ी बहुत जो काउंसलर लेवल पर, मकसद हमें तो ये है ही नहीं कि मुझे कोई फायदा हासिल हो। हम तो दिन रात कहते हैं कि यार हम अपना, अपनी पार्टिसिपेशन इस सोसाइटी को बेहतर बनाने में कैसे अदा कर सकते हैं। अपना टाइम भी देते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता इधर। यहाँ हर बंदा, क्योंकि पॉलिटिक्स में इधर वही आता है जो जिसके दिमाग में कोई तो ख्यालात हैं, कोई वो माशरे में तब्दीली चाहता है। माशरे में तब्दीली तभी आती है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, आप कुछ सोच रहे हैं, फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं कि ये सियासतदान जो है वो माशरे में तब्दीली में एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। तभी यहाँ नॉर्वे में तो लोग इसलिए नहीं पॉलिटिक्स करते कि वो चौधरी बने, वो उनको कोई देखे, उनकी कोई बात सुने, वो माशरे में उनका रिगार्ड हो। यहाँ तो ऐसा माशरा ही नहीं है। यहाँ तो अभी मैं आपको कल की बात बताता हूँ, अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर जो होरे पार्टी से थी, आला सुलबर्ग, वो जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हटी हैं 2 वीक पहले, तो उन्होंने वो ट्राम लिया और ट्राम से वो घर गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे जो जिस दिन दूसरी पार्टी ने ओवरटेक किया है लेबर पार्टी ने, उस दिन शाम को वो अब ट्राम लेके तो अपने घर चुप करके वापस चले गई है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो जो कलेक्टिव ट्रांसपोर्ट वो लेकर वो अपने घर गई है। सर यहाँ तो ये वाली पॉलिटिक्स है, हम तो इस पॉलिटिक्स को कुर्बत से देखते हैं, जानते हैं और उस अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि यही तब्दीली पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में तो आपको प्रोटोकॉल ही इतना ज्यादा है कि उसके बगैर आप बाहर नहीं निकलते, और वो स्टेटस सिंबल बना हुआ है। उसकी बाज जगह पे जरूरी होता है प्रोटोकॉल और बाज जगह पे जरूरी नहीं होता, लेकिन वहां हम सोसाइटी में स्टेटस सिंबल के तौर पर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं कि मेरे आगे पीछे 4 गाड़ियां हैं। इससे क्या अभी खान साहब ने, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, खान साहब ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया है कि मैं हर मिनिस्ट्री के अंदर, हर डिवीजन के अंदर एक 19 ग्रेड का ऑफिसर तैनात कर रहा हूं ताकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल को हल कर सके। अब आप ये देखिए कि 39 डिवीजन्स में 39 19 स्केल के ऑफिसर तैनात किए जा रहे हैं। अगर क्या एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी की वो बराह रास्त ग्रेट 19 के बंदे के साथ उसकी इंटरेक्शन हो सकती है, क्या उसके साथ उसकी रसाई हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आ जाके वही होगा कि किसी तरह आप अपनी एप्लीकेशन को उस 19 तक पहुंचा भी देंगे तो वो एज इट इज मार्क कर देगा उसी डिवीजन में अपने किसी क्लर्क को। मसला जहां से शुरू हुआ था वही है, लेकिन 39 19 ग्रेड के ऑफिसर्स की जो जो सैलरीज हैं और उसके जो अलाउंसेज हैं और उसकी जो फैसिलिटेशन का एक एक्स्ट्रा बोझ खान साहब ने डाल दिया है पूरे अवाम के ऊपर, पूरे मुल्क की अवाम के ऊपर।
खान साहब ने कौन
ये
सा जेब से
तरीका।
देना है?
वही तो मैं सर रोना रो रहा हूं कि मैं यही बात कर रहा हूं कि देना हमने है, लेकिन उसको एड्रेस सही नहीं ना किया जा रहा सर। सर आप सिस्टम को तब्दील करने के बजाय आपने अपर ऑर्गान को के अंदर 39वें ग्रेड के अफसर लगाए, अपर ऑर्गान में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नीचे फैसिलिटेट, आम आदमी जो है वो बराह रास्त किसी क्लर्क से जाके मिलता है, किसी लोकल डेस्क पे जाके मिलता है किसी को। आपने 19वें ग्रेड का ऑफिसर 39वें ग्रेड के 39 ऑफिसर को तैनात किया है जो हायर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर स्ट्रक्चर में है। आम आदमी की रसाई कहाँ है होती है 19वें ग्रेड के साथ?
गोंदल साहब आप तसव्वुर करें ना, मैं अक्सर सोचता हूँ जब तनाई में होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं दिल इनका बहुत अच्छा है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, ये मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि जब ये दरबार लगा होगा तो इमरान खान साहब दरमियान में बैठे होंगे, एक तरफ फवाद चौधरी होंगे, एक तरफ आमर कियानी होंगे, एक तरफ फिरदौस आशिक अवान साहिबा होंगी, एक तरफ शौकत तरीन साहब होंगे, एक तरफ पता नहीं क्या क्या, ये सारे जब इनके आगे पीछे लोग खड़े होंगे तो उसमें से फिर यही कुछ निकला, इसी तरह की रियासत निकलेगी।
सर यकीनन खान साहब के जो सोच है वो पॉजिटिव हो सकती है, वो मदीने की रियासत बनाना ही चाहते हैं, बनाना चाहते हैं 100%। लेकिन जो मुल्क का स्ट्रक्चर है, जो मुल्क का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो उसमें ऐसे आदमी की कोई गुंजाइश नहीं है जहां हर आदमी, यहां सर अगर आप लिखते हैं कि जी ये मक्का डेयरी फार्म, जबकि वो दूध जो है वो बेच रहा है मिलावट के साथ, वहां इदारों के, दुकानों के, चीजों के, बिजनेसेस के नाम हमने बड़े होली जो नेम रखे हुए हैं, लेकिन हमारे किरदार में वो है जहां जो MNA MPs वो पैसे ले देकर एक दूसरे की पार्टियां बदले, या जहां सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा पानी की तरह बहे, वहां खान साहब क्या कर सकते हैं? खान साहब यही कर सकते हैं कि वो, अगर खान साहब चाहते हैं तो वो अपने कारकुन को इज्जत और तकीर दें, अपने कारकुन को जो लॉयल हैं उनको सामने लेकर आए, भले पहले साल हार जाएं, भले दूसरे साल हार जाएं, भले 10 साल लग जाएं, लेकिन अपने लॉयल लोगों को सामने लेकर आए, उनको साथ लेकर चलें। जितने भी ये जो पैसे के लेन देन का हिस्सा लोग होते हैं वो माशरे के लिए कभी अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, वो तो अपने बिजनेस के लिए सोसाइटी।
साहब डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड साहब ही लॉयल है इमरान खान साहब के साथ।
वो खान साहब के साथ लॉयल है ना, वो मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। वो खान साहब को जो बताते हैं वो सब फेक बताते हैं, वो सब आर्टिफिशियल चीजें बताते हैं।
जैसी आवाम ऐसे लीडर, यही हम क्लोज करते हैं। आखिर में आप क्या कहेंगे हमारे सामाइन को?
सर मैं तो अपने सामाइन को यही कहूंगा कि अपना, अपने बच्चों का वक्त जो है वो ऐसे मामलात में जाया ना कीजिए जहां डॉक्टर रियार जैसे लोग आप पर बैठे हों और वो आपको डिक्टेट करें, और उसके लिए हम अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना वक्त बर्बाद ना करें। हाँ जब अच्छे दिन आएंगे तो हम मिलकर जो है ना पाकिस्तान के लिए काम भी करेंगे और PTI और तहरीक इंसाफ को मजबूत भी बनाएंगे, खान साहब को भी मजबूत करेंगे, लेकिन हम सब की ये काविश होनी चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल्ला रियार जैसे लोगों को मंजरनामा से हटना चाहिए ताकि हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जो असल में, हकीकत में सियासत की रमूज को जानते हो, जो असल में PTI या पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हो। तो ये हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो अपने दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जो हमने एक लॉयलिटी के साथ दिल से हम एक एसोसिएशन हमने बनाई है POR पाकिस्तान ओवरसीज राइट्स के नाम से, उसका हम हिस्सा भी बनेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।
सामाइन ये थे नासिर गोंदल साहब जो कि ओस्लो की फिजाओं से हमारे साथ थे, उन्होंने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। सामाइन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, हमने जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने आपके साथ शेयर की। सामाइन अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।